मेरे युवा मित्रों नमस्कार, आज 6 दिसंबर 2018 है और आज के इस afis.com के डेली ऑडियो लेक्चर में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं और आप सबके साथ ही फ्रेंड्स विशेष रूप से स्वागत करता हूं अपने उन 3 नौजवान साथियों का जिन्होंने एकेडमी की 3 से 17 मार्च के बीच होने वाली क्लासेस के लिए अपने रजिस्ट्रेशन कराए हैं। इन दोस्तों के नाम है इम्तियाजुल, आपका गांव है अमौना, जिला अररिया बिहार से हैं। कुलजीत सिंह, आपका गांव है पौंथी, आपका जिला है रुद्रप्रयाग उत्तराखंड से हैं। और सूरज पटेल, आप गौतम बुद्ध नगर उत्तर प्रदेश से हैं। तो इम्तियाजुल, कुलजीत और सूरज, आप तीनों मित्रों का मैं एकेडमी की अपनी पूरी टीम की ओर से बहुत बहुत हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के मुख्य विषय के तहत मैं अर्थशास्त्र पर कुछ बात करूंगा और मेरे बात करने का जो केंद्रीय बिंदु होगा वह होगा रिजर्व बैंक ने जो कल मौद्रिक नीति घोषित की है, उस मौद्रिक नीति का कैसे अर्थव्यवस्था से संबंध होता है। और कल रिजर्व बैंक ने जो अपनी मौद्रिक नीति के बारे में कुछ स्टेटमेंट दिए हैं, उन स्टेटमेंट को आधार बनाकर मैं कुछ बातें आपसे शेयर करूंगा। लेकिन इससे पहले आइए हम कुछ दूसरी खबरों को देख लेते हैं। मित्रों, कल के जो न्यूज में आपने एक खबर पढ़ी वो कोयला सचिव को लेकर के कि किस तरह से कोयला सचिव को 3 साल के कारावास की सजा सुनाई गई है। जो सजा है वह खासकर कोयला खदानों का आवंटन जो पहले हुआ था, जो पहले की जो सरकार थी मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, उसमें गलत तरीके से कोयला खदानों का आवंटन किया गया था, जिसे अखबारों में आप कोलगेट कांड के नाम से भी पढ़ते होंगे। उस समय हम गुप्ता जी थे, वो कोयला सचिव थे, तो उन्हें भी उसमें एक तरीके से अपराधी माना है और उन्हें सजा दी गई है। देखिए, अब ये मात्र एक घटना है, और भी लोगों को अपराधी ठहराया गया है, कारावास की सजा दी गई है, इनसे भी अधिक कारावास की सजा दी गई है, लेकिन हमारे लिए वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। हमारे लिए का मतलब है जो स्टूडेंट सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए। चूंकि आप सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं, आप इसी सेवा में जाना चाहते हैं, तो इसलिए स्वाभाविक है कि जिस सेवा में आप जाना चाह रहे हैं उससे संबंधित अगर कोई घटना होती है तो आप उस पर ध्यान दें। और खासकर ऐसी घटना में इसलिए कह रहा हूं कि जो भी इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस का ऑफिसर होता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में सचिव बनना उसका सपना होता है, मतलब उसके कैरियर का हाइएस्ट पॉइंट होता है जहां तक वो पहुंच सकता है। अगर हम कैबिनेट सेक्रेटरी, जिसकी केवल एक ही पोस्ट होती है, उसे हटा दें तो अगर ऐसे अधिकारी को इस तरह की सजा मिल रही है तो डेफिनेटली कुछ प्रश्न खड़े होते हैं सिविल सेवा के ऊपर। और जब भी इस तरह के प्रश्न आए तो उसमें आप इस उदाहरण को ले सकते हैं, उदाहरण के तौर पर कि क्या अब हमारे जो सिविल सर्वेंट है, अब आप आईएएस को हटा दीजिए, अब पूरे नौकरशाही की बात कर रहे हैं, क्या हमारे सिविल सर्वेंट अब ज्यादा राजनीतिक दबाव में काम कर रहे हैं कि उन्हें इस तरह के गलत काम करने के लिए बाध्य होना पड़ रहा है। एक प्रश्न यह भी खड़ा होता है कि क्या अब उनमें इतनी ताकत नहीं है कि वो राजनीति गलत के सामने स्टील फ्रेम की तरह मजबूती के साथ खड़े रह सकें। यह भी एक सवाल उठता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि उनके नैतिक स्तर का इतना पतन हो गया हो कि वो खुद भी अब इसमें इसी तरह के कामों में अपने हित देखते हैं। तो इस तरह के ढेर सारे प्रश्न इसके साथ जुड़े हुए हैं और हो सकता है कि इसी तरह के प्रश्न फ्रेम भी कर लिए जाएं, आपसे पूछ भी लिए जाएं। कुल मिलाकर यह कि यह जो एक घटना है, आपके जनरल स्टडीज मेंस का जो सेकेंड पेपर है उसमें देखिए, आप सिविल सर्विसेज पर कुछ चैप्टर्स आपको पढ़ने होते हैं। ठीक इसी तरह से मेन एग्जामिनेशन का जो फोर्थ पेपर है एथिक्स से रिलेटेड, तो उसमें तो एथिक्स के काफी प्रश्न होते हैं, तो उनमें आप इसे एक उदाहरण के तौर पर ले सकते हैं। तो इसीलिए मैं यहां सजेस्ट करूंगा कि जब भी कोई इस तरह की घटना होती है तो वह घटना आपके दिमाग में दर्ज हो जानी चाहिए, और बेहतर होगा कि आप कहीं उसे नोट भी कर लें ताकि कुछ समय तक वह आपके दिमाग में लगातार बनी रहे और जरूरत पड़ने पर आप ऐसी घटनाओं का इस्तेमाल करके एग्जामिनर को यह बता सकें कि नहीं, अपने समय के प्रति मैं पूरी तरह से सचेत हूं और एक आलोचनात्मक दृष्टि भी रखता हूं। दोस्तों, दूसरी खबर के तहत एक शब्द आपने सुना होगा जो खासकर क्रिश्चियन मिशेल को लेकर के था कि उन्हें सीबीआई हिरासत में भेज दिया गया है। खासकर जो अगस्ता वेस्टर्न हेलीकॉप्टर की दलाली लेने के मामले में कल हम लोगों ने इस पर बातें की थी। तो देखिए जो सीबीआई हिरासत है, आप हालांकि आप सब जानते होंगे लेकिन मैं थोड़ा सा स्पष्ट कर दूं कि अगर किसी को हिरासत में लिया जाता है तो सीधे है कि आप उन्हें जेल में भेजेंगे, लेकिन अगर आप सीबीआई हिरासत में भेज रहे हैं तो इसका मतलब है कि वो व्यक्ति सीबीआई के नियंत्रण में रहेगा, और सीबीआई के नियंत्रण में इसलिए रहेगा ताकि सीबीआई उनसे जरूरी पूछताछ कर सके, है ना। इसके बाद फिर कोर्ट फैसला करेगा 5 दिनों के बाद कि 5 दिनों के लिए सीबीआई हिरासत में है कि अब क्या किया जाए, है ना। तो वो सीबीआई हिरासत होती है, तो इसे आप थोड़ा सा ध्यान में रखें। एक जो बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है दोस्तों, वह है अभी अभी जो हमारा अंतरिक्ष यान छोड़ा गया है, अंतरिक्ष यान, और जिसका नाम है आप जानते हैं GSAT-11। एक महत्वपूर्ण, बहुत महत्वपूर्ण घटना है। प्री एग्जामिनेशन की दृष्टि से मुझे लगता है कि सबसे महत्वपूर्ण बात इसमें यह है कि ये उपग्रह फ्रेंच गुयाना से छोड़ा गया है, मतलब हमारे यहां से नहीं छोड़ा गया, इसरो से। जबकि हमारे यहां से हम दूसरे देशों के उपग्रह छोड़ रहे हैं, जैसे हाइसिस के तहत आपने देखा कि हमने ऑस्ट्रेलिया के और न्यूजीलैंड के और अमेरिका के उपग्रह छोड़े, तो हम अपने उपग्रह दूसरी जगह से क्यों छोड़ रहे हैं। ये एक इंपॉर्टेंट तथ्य है और आपके दिमाग में ये बात होनी चाहिए, क्योंकि ये काफी वजनी उपग्रह था। इसका जो वजन था वो लगभग 5.8 टन के आसपास था, 8.6 टन, जिसे आप कह सकते हैं कि लगभग 6000 किलो के आसपास, 5800 किलो के आसपास। और इतनी क्षमता हमारे सेट अभी जो रॉकेट है, लॉन्चिंग रॉकेट है, उतनी नहीं है। और ये भारत का अब तक सबसे वजनी छोड़ा गया उपग्रह है, इसीलिए फ्रेंच गुयाना से छोड़ा गया। लेकिन जो इसरो के अध्यक्ष हैं उन्होंने साथ ही साथ ये स्टेटमेंट दिया है कि 6 महीने के अंदर हम 6 टन वजन वाले उपग्रह छोड़ने में सक्षम हो जाएंगे। तो शायद हमें अब आगे इतने वजनी उपग्रह को बाहर से छोड़ने की जरूरत न पड़े। यहां मैं साइंस के प्रश्नों के तहत एक बात आपके ध्यान में और लाना चाहूंगा कि देखिए जो सैटेलाइट छोड़े जाते हैं उन सैटेलाइट का जो पूरा वजन होता है उस वजन का लगभग 60% केवल फ्यूल की वजह से होता है, यानी कि उसमें जो ईंधन रखा जाता है। अभी जो ईंधन रखा जा रहा है वो केमिकल ईंधन होता है। अब जो रिसर्च हो रही है और भारत ने उसका सफल इस्तेमाल भी कर लिया है, तो अब भारत इलेक्ट्रिक पावर का इस्तेमाल करेगा, इलेक्ट्रिक पावर से उसे ऊर्जा मिलेगी। जब इलेक्ट्रिक पावर से ऊर्जा मिलेगी तो बट नेचुरल है कि ये जो केमिकल फ्यूल का वजन है वह घट जाएगा, और जब इसका वजन घट जाएगा तो सीधी सी बात है कि सैटेलाइट हल्के हो जाएंगे, हम अपने यहां से ही छोड़ने में सफल हो जाएंगे। तो इस तथ्य को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और इस GSAT-11 की जो सबसे बड़ी विशेषता है दोस्तों कि इससे जो एक इंटरनेट की जो ताकत है, जो पहुंच है, वो बहुत जबरदस्त हो जाएगी। दूर दराज क्षेत्रों तक हम इंटरनेट पहुंचाने में सफल रहेंगे और इंटरनेट की रफ्तार भी बहुत बढ़ जाएगी। टेलीकॉम और DTH के क्षेत्र में इसका बहुत महत्वपूर्ण रोल होगा, और इसकी उम्र जो आंकी गई है अलग अलग तरीके से पढ़ने में आ रहा है, मित्र 10 से 15 साल तक की इसकी उम्र आंकी गई है। ये एक महत्वपूर्ण खबर थी फ्रेंड्स। आइए अब मैं आता हूं अब आज के मुख्य विषय पर। मुख्य विषय है रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति, जिसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। सामान्य तौर पर मैं अपने क्लास स्टूडेंट को याद दिलाना चाहूंगा कि आप लोगों को ध्यान होगा कि हम लोगों ने मौद्रिक नीति को लेकर के बहुत विस्तार से क्लास में चर्चा की थी। अब मैं रिजर्व बैंक के जो स्टेटमेंट हैं उन स्टेटमेंट के बारे में जो बातें बताने जा रहा हूं, नो डाउट कि मैं थोड़े से विस्तार से उनके बारे में बताना चाहूंगा, क्योंकि बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्हें इसके बारे में बहुत बेसिक जानकारी नहीं है और वे मुझे सुन रहे हैं पहली बार, मतलब वो इन विषयों पर इतने विस्तार के साथ शायद सुन रहे होंगे या सुनते भी होंगे, तो शायद चीजें स्पष्ट नहीं हुई होंगी, जटिलता महसूस कर रहे होंगे। इसीलिए मैं विस्तार से थोड़ा सा बता रहा हूं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को, यानी कि जो हमारे क्लास के स्टूडेंट रहे हैं, इसे समझने में अपेक्षाकृत बहुत आसानी होगी। और हो सकता है कि मैं अगर इस बात की चर्चा यहां नहीं करता और जो मैं आपको सामग्री आज एडिटोरियल कमेंट्स प्रोवाइड कर रहा हूं टाइम्स ऑफ इंडिया का और बिजनेस स्टैंडर्ड का, उन्हें पढ़कर ही आपका काम चल जाता। लेकिन फिर भी कुछ बातें मैं आपसे कहूंगा। देखिए, रिजर्व बैंक ने एक बात कही और उन्होंने कहा कि अभी उन्होंने रेपो दर, रिवर्स रेपो दर में कोई तब्दीली नहीं की है। रेपो दर, रिवर्स रेपो दर क्या होता है, क्यों उन्होंने तब्दीली नहीं की और तब्दीली करने से क्या फर्क पड़ जाता है, दोस्तों इस बेसिक चीज पर मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि इस टॉपिक पर इससे पहले भी इसी डेली ऑडियो लेक्चर के तहत हम लोग बातें कर चुके हैं। अभी जो रिजर्व बैंक ने जो एक बात कही है गवर्नर ने कि अगर आने वाले दिनों में, भविष्य में महंगाई का जोखिम नहीं रहा तो रेपो दर घटाई जा सकती है। आने वाले दिनों में यदि महंगाई का जोखिम नहीं रहा तो रेपो दर घटाई जा सकती है, ये एक सेंटेंस, इसको आप एक तरफ रख दीजिए। दूसरी तरफ आप अखबारों में ही पढ़ेंगे कि भारत में कुछ समय से, कुछ महीनों से कह लीजिए, कि महंगाई दर काफी कंट्रोल में रही है। रिजर्व बैंक ही कह रहा है काफी कंट्रोल में रही है, मतलब बढ़ी नहीं है। तो अगर रिजर्व बैंक यह बात कह रहा है तो बट नेचुरल है कि फिर उसे रेपो दर में कमी कर देनी चाहिए, क्योंकि महंगाई ऑलरेडी नियंत्रित है और रिजर्व बैंक खुद ही कह रहा है कि उसका कारण है खाद्य की कीमतों में गिरावट आई है, इसलिए खुदरा, और वो भी खुदरा मूल्य सूचकांक, याद रखिए खुदरा मूल्य सूचकांक, मतलब इसमें वो थोक मूल्य सूचकांक की बात नहीं कर रहा है, खुदरा से ही तो कंज्यूमर अफेक्टेड होता है, वो नियंत्रित है, बल्कि उसमें कमी भी आई है। दूसरी तरफ पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतें घटी हैं, वर्ल्ड लेवल पर आप देख रहे हैं, पेट्रोलियम ओपेक वगैरह के संदर्भ में हमने बात भी की है। तो जब महंगाई घट रही है तो आप अभी उसको कम कर देते, तो आपको लगेगा जैसे कि रिजर्व बैंक एक ही साथ दो विरोधी बातें कर रहा है। लेकिन जब आप इसे ठीक संदर्भों में समझने की कोशिश करेंगे तो आपको लगेगा कि नहीं, वो बातें विरोधी नहीं कर रहा है, क्योंकि वो कह रहे हैं कि भविष्य में जोखिम नहीं रहा तो, यानी कि रिजर्व बैंक को ऐसा लग रहा है कि भविष्य में जो खुदरा मूल्य है उसका जो सूचकांक है वो बढ़ सकता है। खुदरा मूल्य सूचकांक बढ़ने का मतलब है बहुत स्पष्ट रूप से कि मुद्रा स्फीति बढ़ सकती है, मुद्रा स्फीति बढ़ सकती है का मतलब है कि महंगाई बढ़ सकती है। और मित्रों, इस महंगाई का किस तरीके से संबंध ब्याज की दरों से है, मैं समझता हूं हमारे क्लास स्टूडेंट बहुत अच्छे तरीके से इसको समझ रहे होंगे, यहां एक्सप्लेन करने की जरूरत मैं नहीं समझता क्योंकि वक्त कम है और बातें करने के लिए बहुत ज्यादा है। तो अब आप देखिए कि रिजर्व बैंक जिस जोखिम की बात कर रहा है कि हो सकता है कि महंगाई आगे बढ़ जाए, वो जोखिम क्या है, वो कह रहा है कि देखिए सबसे बात पहली तो यह कि जो पेट्रोलियम पदार्थों की अभी कीमत कम हुई है ये परमानेंट नहीं मानी जा सकती। हो सकता है कि जो ओपेक कंट्रीज के देश हैं वो अपना उत्पादन कम कर दें, उत्पादन कम करेंगे तो पेट्रोलियम पदार्थों की सप्लाई कम हो जाएगी और पेट्रोलियम पदार्थों की कीमत फिर से बढ़ जाए तो फिर हम क्या करेंगे, क्या करेंगे मतलब, अगर इसने रेपो दर घटा दिया और मार्केट में ज्यादा पैसा आ गया तो बट नेचुरल है कि आप उस पैसे को विड्रा तो कर नहीं सकते, तो फिर और ज्यादा महंगाई बढ़ जाएगी, तो वो एक अर्थव्यवस्था के लिए आप यूं कह लीजिए कि खतरनाक स्थिति उससे आ जाएगी। दूसरी बात, आरबीआई ने यह भी कही है कि केंद्र सरकार ने कुछ समय पहले ही, आपको मालूम है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ा दिया है। चुनाव के दौरान आप देख रहे होंगे कि भारतीय जनता पार्टी इस बात का बार बार हवाला भी देती है कि किसानों के लिए हमने ये किया, न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ा दिया। और अगर आप न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ा देते हैं तो सीधी सी बात है कि खाद्यान्न की कीमतें बढ़ जाएंगी, तो जब खाद्यान्न की कीमतें बढ़ जाएंगी तो सीधी सी बात है कि मुद्रास्फीति हो जाएगी, महंगाई बढ़ जाएगी। तो देखिए, चूंकि अभी पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतें कम हैं इसलिए महंगाई कम है, खाद्य पदार्थों की कीमतें कम हैं इसलिए महंगाई कम है, जिनके भविष्य में अधिक हो जाने की आशंका है और यही जोखिम है। हां, अगर यह आशंका गलत साबित हुई तो रिजर्व बैंक कह रहा है कि आगे ब्याज की दरों में कमी की जा सकती है। देखिए, अगर वो कहता है कि रेपो दर घटाया जा सकता है तो इसका मतलब यह है कि ब्याज की दरों में कम किए जाने की संभावनाएं बैंकों के सामने रखी जा सकती है कि आप बैंकों के जो ब्याज के की जो दर है वो कम कीजिए। अब ये बात अलग है कि बैंक कम करते हैं या नहीं करते हैं, और इसके बारे में भी आज आप अखबारों में पढ़ेंगे कि अब रिजर्व बैंक ये नियम बनाने जा रहा है कि अगर हम रेपो दर घटाएंगे तो बैंकों को भी अपनी ब्याज दर घटानी पड़ेगी। इस पर भी वो दिशा निर्देश जल्दी ही जारी करेंगे। जब वो जारी करेंगे मित्रों, तब हम इसके बारे में बातें करेंगे। तो आज के मुख्य विषय के बारे में दोस्तों बस इतना ही। जहां तक न्यूज़पेपर्स की क्लिपिंग्स का सवाल है, मैं आप सबको प्रोवाइड कर रहा हूं, आप सब देख लेंगे। ईमेल लिखने वाले सभी दोस्तों को मैं धन्यवाद देता हूं, और उन्हीं में से दो मित्रों के नाम हैं, सत्येंद्र कुमार मिश्र वाराणसी से और साध्वी सिंह गोरखपुर उत्तर प्रदेश से। आप सबका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ ही आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार।